इसकी तो तर्क करने की बुद्धि खत्म हो गई है। मल तो मल है भाई, चाहे सूखा हो चाहे गीला हो, मल तो निकृष्ट है ना। उसी तरह से भौतिक शरीर, चाहे वो हैंडसम हो चाहे हैंडसम ना हो, दुबला पतला हो, सिकड़ी हड्डी हो, हाँ, या कोई ब्यूटी क्वीन हो या फिर कोई काली कलूटी बैंगन लूटी हो, हाँ, लेकिन सारे के सारे क्या है, मल और मूत्र के थैले ही तो है। अगर शरीर को देखें, ये मल मूत्र का थैला ही तो है ना। बाहर से हम ठीक है, इस पे एंटी रिंकल क्रीम लगाएं या इसको कंडीशनर से सजाएं, हाँ, लेकिन अल्टीमेटली ये है तो मल मूत्र का थैला है कि नहीं। अंडा, हड्डी, मांस, मल मूत्र इसी का थैला है ना। इसको कोई अब लिपस्टिक से सजा ले, हाँ, या फिर जो है कोई बालों में क्रीम लगा के संवार ले, लेकिन है तो अल्टीमेटली भाई। तो इस तरह का डिस्टिंक्शन क्या है वास्तव में, वो अज्ञानता के कारण है। तो इस तरह के जो हम डिस्टिंक्शन करते हैं, उनसे जो आनंद मिलता है, क्या बता रहे भगवान गीता में, कि इस तरह के आनंद का शुरुआत भी है और अंत भी है। जो चतुर व्यक्ति है इसमें रमता नहीं है कभी भी। लेकिन हम समाज में देखें तो 99.99% लोग ये काम करते हैं। और इससे क्या बताया, दुख योनय एवते, दुख योनय एवते, फिर दुखों की जो श्रृंखला वो चलती रहती है। इस संसार में सुख जानते किस तरह का है, जैसे कि एक कुएं के ऊपर एक बहुत ही सुंदर फूलों का बिस्तरा बिछा दिया जाए, कुएं के ऊपर, कुआं बताया ना, अंदर से खाली होता है, ऊपर हमने चादर बिछाई है और उसके ऊपर फूल छिड़क दिए हैं, और बोला जाए हियर इज द बेड एंजॉय, वाह, और फिर जो दौड़ता हुआ आए व्यक्ति और फिर छलांग मार दिया उसके अंदर, हाँ, वाह क्या बिस्तरा है। जैसे बिस्तरे को छुएगा उसे अच्छा लगेगा क्योंकि फूलों के टच में आएगा, हाँ, लेकिन फूलों के साथ स्पर्श कितने समय का है, पल भर का। वैसे ही संसार के जो हमारे सुख हैं वो ऐसे ही हैं, दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, वाह दैट्स सो गुड, आई एम ऑल सेट, ऑनिमा गेट सेट गो, तो कुछ समय का ऑफकोर्स आना जाता है जब थोड़ा स्पर्श होता है, लेकिन उसके बाद असलियत भी सामने आती है, ओह बैड डील, इसमें दुख ज्यादा है। तो खुशियों की क्या है, एडवर्टिजमेंट है भौतिक संसार में। आप देखें तो भौतिक संसार क्या है, एडवर्टिजमेंट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नहीं है, एडवर्टिजमेंट है। तो भौतिक संसार क्या है, एक धोखा है, इसीलिए यहां एडवर्टिजमेंट है खुशियों की, लेकिन पीछे जो अंदर सारा माल है, पैकेजिंग है, वो दुखों की है। दुख योनय एवते, इसलिए भगवान गीता में बोलेंगे 8वें अध्याय में, दुख आ रहे हम, दुख योनय एवते। पर जो बुद्धिमान होता है व्यक्ति, वो आत्मा के स्तर पर सबको देखता है, इसलिए वो कभी भ्रमित नहीं होता। और क्या बताया जा रहा है इसमें, तो ये हमने 18वां श्लोक लिया था क्योंकि बहुत ही फेमस श्लोक है, ठीक है, इसके पहले का श्लोक भी हम ले रहे हैं। तो भगवान गीता में बोल रहे हैं, जब मनुष्य की बुद्धि बुद्धि मन श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो यानी कि हमें मन बुद्धि श्रद्धा और शरण ये हमें भगवान में लगाने पड़ेंगे, समझ रहे हैं आप, हमें ये भगवान में लगाने पड़ेंगे। भगवान में लगाने में का मतलब है वास्तव में भगवान के प्रति प्रेममयी भाव होना, मतलबी वाला नहीं, वास्तव में जेन्युइन। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा भी, क्योंकि जो चापलूस होगा वो तो बाहर से करेगा ना। जैसे भक्ति साहब महाराज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं, एक जमींदार था, उनका एक नौकर था, तो जमींदार कहता है ये बताओ ये आलू आलू कैसा होता है, आलू क्या चीज होती है, आलू कैसा, तुम्हारे क्या राय है आलू के बारे में। कहता है मालिक आप ही कुछ कहें। मालिक कहता है आलू अच्छा है वैसे, स्वादिष्ट होता है। अरे हाँ मालिक बिल्कुल, आलू इतना स्वादिष्ट होता है, इसको आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं, इसको आप चाहे तो इसके पकौड़े बना सकते हैं, चाहे तो इसको कुतर कुतर के इसके फिंगर चिप्स बना सकते हैं, और तो और आलू के अंदर इतने गुण हैं, इसके अंदर इतने विटामिन होते हैं, तभी तो सब्जियों का राजा कहा जाता है। इसलिए वास्तव में भगवान की सबसे सुंदर रचना है आलू। ओके, तो जमींदार ने कहा लेकिन आलू मेरा मतलब काफी रजोगुण होता है इसके अंदर, हाँ बड़ा डल होता है ये जो फल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम तामसिक होता है, लिप लिबासा होता है, अजीब सा होता है, शक्ल भी अजीब सी होती है, कोई ऐसी शक्ल किसी की मिल जाए शादी ना हो उसकी तो जिंदगी में, अजीब सा होता है आलू, पता नहीं क्या कैसे कैसे उगाता है, जमीन में से निकलता है, मिट्टी जैसा दिखता है, गंदा सा होता है। अच्छा, बैंगन, बैंगन के बारे में क्या राय है तुम्हारी सरकार, आप ही कुछ बोलिए। बैंगन अच्छा होता है वैसे, इसके अंदर आयरन होता है। अरे बैंगन, अरे पूछे नहीं क्या बात है, लंबा भी होता है, मोटा भी होता है, गोल भी होता है। इसको कुकर में डालने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको गैस पे रखिए और इसको मुलायम बनाइए, इसका भरता बनाइए, इसको सब्जी के साथ खाइए, कैसे भी खाइए, वाह भगवान ने क्या चीज बनाई है बैंगन। लेकिन इसके अंदर ना कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती जमींदार ने कहा। अरे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अरे बैंगन मतलब बेगुण, उसमें कोई गुण ही नहीं है, क्या बना दिया बताओ। हाँ ऐसे ये भी कोई सब्जी होती है, अजीब सा दिखता है, हाँ खाओ तो क्या फायदा, मानो कागज खाया, कुछ नहीं एकदम बेकार होता है। तो जमींदार ने कहा तुम्हारा अजीब हो यार, तुमसे कोई राय राय पूछता हूँ तो मेरे मेरी राय में ही जो है अपनी राय जोड़ देते हो, उसके बाद अपनी राय तुम बताते नहीं। उसने तो कहा सर मेरे को आलू और बैंगन ने तनख्वाह नहीं देनी, आपने तनख्वाह देनी है। तो ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा, ऐसे व्यक्ति का मन, ऐसे व्यक्ति की शरण क्या जमींदार में थी? नहीं, वो अपने मतलब के लिए कर रहा है। तो यहां जो बताया जा रहा है कि वास्तव में ऐसे व्यक्ति का मन, बुद्धि, उसकी शरण, उसकी श्रद्धा सब भगवान में है, यानी कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति प्रेम के द्वारा वशीभूत है, मतलबी तौर पे नहीं। हम अभी हमने अपनी शरण अभी किसके लिए है? अपनी बुरी आदतों के लिए है ना, अपनी भौतिक संसारिक इच्छाओं के लिए है, हमने भगवान की शरण नहीं ली है ना। अगर भगवान की शरण ली भी है तो अपने मतलब के लिए, कि भगवान ये तीन अगरबत्ती दिखा रहा हूं, है? मेरी ये प्रिंटआउट निकाला मैंने, अपनी इच्छाओं का पूरी कर देना है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। बिजनेस डील, तो भगवान के साथ जा भी रहे हैं तो किससे जाते हैं? इच्छाएं। देखो ये हमारे बस की बात नहीं है, देखो हमारा बेटा नहीं हो सकता, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल सकती, इसके लिए अब क्या किया जाए? देखो किसी के साथ तो बिजनेस करना पड़ेगा, भगवान के साथ बिजनेस करते हैं। तो फिर ऐसे व्यक्ति वास्तव में क्या है, इसे ऐसे व्यक्ति का मन, बुद्धि, शरण और श्रद्धा ने भगवान की शरण नहीं ली, उसने अपने बिजनेस की शरण ली है, उसने अपनी इच्छाओं की शरण ली है, अपनी महत्वाकांक्षाओं की शरण ली है, भगवान की शरण नहीं ली उसने। तो ऐसा व्यक्ति जो है वास्तव में कभी शुद्ध नहीं हो सकता। या कुछ ऐसे जो निराकारवादी भी होते हैं या मायावादी भी होते हैं, वो इसलिए भगवान के पास जाते हैं कि ना मुक्ति मिल जाए। बड़ा कष्ट है संसार में, जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा, बीमारी, ओए होए, बड़ा कष्ट है, भगवान मुक्ति दे दो बस हमें, हाँ संसार से ना मुक्ति मिल जाए हमें, यहां भी अपना अपना मतलब है ना। इसीलिए जो भक्त होते हैं वास्तव में सिर्फ वो ही सब प्रकार के कल्मश से मुक्त हो पाते हैं, क्योंकि क्या लिखा है, ऐसा व्यक्ति जिसने की पूरी तरह से शरणागत है वह समस्त कर्म से शुद्ध हो जाता है। तो भगवान के जो भक्त हैं सिर्फ वो ही शुद्ध हो पाते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलिया शांत है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, जो भक्त हैं वो शांत है आसन। और वो अशांत भी इसलिए होना चाहते हैं कि भगवान की खुशी हो, कि भगवान को खुशी मिले। ऐसे प्रभुपाद जी थे, अगर श्री प्रभुपाद चाहते तो वृंदावन में रहते, भजन करते, कौन छोड़ना चाहेगा वृंदावन, और वो भी उस समय के वृंदावन जो कि जब अर्बनाइजेशन नहीं था, हाँ कौन छोड़ना चाहेगा, नहीं प्रभुपाद जी ने कष्ट लिया कृष्ण के लिए। तो जब भक्त जब भगवान के लिए कष्ट लेता है, उनके लिए जो है चुनौतियां लेता है, तो इससे उसको जो है और आनंद मिलता है और संतुष्टि मिलती है, क्योंकि वो इस संतुष्टि से आसक्त नहीं है, वो भगवान से आसक्त है, वो भगवान से आ सकता है, इसीलिए वो किसी भी तरह का कष्ट लेने के लिए तैयार होता है, किसी भी तरह का। और इसी को वास्तव में शुद्ध भक्ति कहते हैं, क्योंकि खुशियों का एक लॉ है, देयर इज अ लॉ ऑफ हैप्पीनेस, मोर यू क्रेव फॉर इट मोर इट इज अवे फ्रॉम यू। हिंदी में बोलता हूं, जितना आप खुशियों के पीछे भागते हैं उतना खुशियां आपसे दूर जाती हैं, और जितना भगवान की सेवा के पीछे भागते हैं उतनी खुशियां आपके पीछे भागती हैं, क्योंकि वो आपकी वास्तविक स्थिति है, वो आपकी वास्तविक स्थिति है। अब ये सोचिए कि जैसे कोई मछली है, हाँ, और मछली अब समुद्र से बाहर आना चाहे कि मैं बाहर आके पिज्जा बर्गर खा लूं, हाँ, और वो उछल के आग भी गई बोर्ड के अंदर, हाँ, और देख रही है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, मैकडोनल्ड का बर्गर और साथ में कोका कोला भी रखी हुई है और वो देख रही है उसको, चलो आपने बर्गर के ऊपर रख दिया, आपने थोड़ी सी कोका कोला भी डाल दिया उसके ऊपर, खुश है वो क्यों? क्योंकि मछली की वास्तविक स्थिति पानी में, तो इस तरह से जीव की वास्तविक स्थिति क्या है? भगवान की सेवा में, वास्तव में। तो जो भगवान की भक्ति में लगना हमारे लिए नॉर्मल चीज है वास्तव में, इस बात को हमें समझना है। इसलिए एक एक कहावत है, वी आर नॉट ह्यूमंस हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। समझ रहे इस बात को? मैं हिंदी में बताता हूं, ऐसा नहीं कि हम वास्तव में कोई मनुष्य हैं जिनको कोई आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है, हम वास्तव में आध्यात्मिक हैं जिनको मनुष्य अनुभव हो रहा है। मतलब कि हम मनुष्य की योनि में आ गए हैं वास्तव में, लेकिन वास्तव में हम आध्यात्मिक यानी कि हम आत्मा है। तो वास्तव में कोई अगर बोले आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, बोले जी हैप्पी बर्थडे, मेरा बर्थडे कैसे हो सकता है, मैं तो आत्मा हूं, अजो नित्यम शाश्वत हो या पुरानो, मेरा तो कभी जन्म होता ही नहीं, आत्मा का जन्म कभी होता ही नहीं, आत्मा का जन्म होता है नो, अजो उसका जन्म कभी हुआ ही नहीं, लेकिन दुनिया से बताते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, आपका जन्म हुआ है मुबारक हो, लेकिन एक्चुअली बर्थडे जो है बर्थ तो कभी हुआ ही नहीं आत्मा का, इट इज अनबॉर्न, है ना? तो क्योंकि वास्तव में हम शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, हम ये नहीं जानते कि हम आत्मा हैं, और इसीलिए जो है हम भगवान की शरण में नहीं जाते, दैट्स व्हाई हम लोग दुख पाते हैं। और क्या लिखा है इसमें देखते हैं, 5.19 में चलते हैं। तो जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो ये भ्रम नहीं है, मैं बड़ा भ्रमित हूं, वो वाला भ्रम नहीं है, भ्रम मतलब कि शुद्धता में स्थित रहते हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी सांसारिक कलमश नहीं है, उस स्थिति में रहते हैं, इसमें दुख दुखी होने वाली बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है। तो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण आता है सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी जो थे उनके पिताजी कौन थे? व्यासदेव। तो व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को जनक महाराज के पास भेजा कि कुछ सीख के आएगा, क्योंकि जनक महाराज जो है वो भी बहुत उन्नत वैष्णव है, तो उनके पास भेजा। तो दरवाजे के बाहर जब पहुंचे सुखदेव गोस्वामी, जनक महाराज के महल के बाहर पहुंचे, तो दरबार ने आके बताया महाराज सुखदेव गोस्वामी आए हैं, कहते ठीक है उन्हें बाहर इंतजार करने दो। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। ऐसा नहीं कि अरे हद हो गई, अरे हम क्या, अरे अरे नत्थू कह रहे हैं क्या, अरे दरवाजा नहीं खोल रहे, अरे कोई आव भगत करने वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं, बैठे हुए हैं और कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। तीसरे दिन जो है बुलाया उन्होंने, जनक महाराज ने कहा वो सुखदेव गोस्वामी को अंदर ले आइए आप, कहीं आइए आइए सुखदेव गोस्वामी आपको हमने बाहर बिठाया, आइए आइए बैठी बैठी आइए यहाँ। तो उनको बिठाया गया, तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी तो आपको वेदव्यास जी ने भेजा है, लेकिन मैं अपने विद्यार्थी की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि क्या वो मुझसे सीखने लायक है भी कि नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी ने हाँ जोड़े, ठीक है जो परीक्षा आप देना चाहें। उन्होंने कहा ठीक है, ये शुगर क्रिस्टल्स हैं यानी कि शुगर के जो चीनी के दाने हैं, ये आपकी जीभ पे रखूंगा मैं, ये पिघलने नहीं चाहिए, अब कोई मीठी चीज अगर जीभ पे रखी जाए तो जीभ पे पानी तो आता ही है ना। फिर बोले कि रसगुल्ला आपकी जीभ पे जाए, लेकिन जीभ से एक लार नहीं निकलनी चाहिए आपकी। ए प्रभु जी क्या क्या अजीब सी बातें कर रहे हो, बताओ रसगुल्ला मुंह में जाएगा, किसी मुंह में पानी नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने इस तरह की परीक्षा ली सुखदेव गोस्वामी की, उन्होंने कहा ये चीनी के कुछ क्रिस्टल्स हैं, चीनी के कुछ दाने हैं, ये मैं आपकी जीभ पे रख रहा हूँ, ये पिघलने नहीं चाहिए, क्योंकि और हाँ सुखदेव गोस्वामी को पता था कि भगवान को अर्पित नहीं है ये, तो उन्होंने उनकी जीभ पे रखे। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कई घंटे बीत गए, वो क्रिस्टल एज इट इज पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में ऐसे व्यक्ति की सांसारिक भोग करने की इतनी सी भी इच्छा नहीं होती कि मीठा है थोड़ा, एक आध बार कर लें। ऐसा व्यक्ति इस स्थिति में वास्तव में स्थित होता है जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, जिन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है, ये ब्रह्म के समान निर्दोष है। ये होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्दोष होना। वास्तव में जो भक्त जितना भक्ति में आगे बढ़ता जाता है ना, उसमें मासूमियत आती जाती है। आप ऐसे व्यक्ति को देखो कि यार इतना इतना टाइम हो गया इसको भक्ति में, ये ऐसी मासूमियत क्यों है इसके अंदर? वो मासूमियत इसीलिए क्योंकि भक्ति में बहुत आगे चढ़ गया वो। ये सारी चलाकियां हमारी जो है ना, वो इसीलिए है क्योंकि हम वास्तव में सांसारिक हैं। हमारी चेतना जो है सांसारिक है, प्रकृति के तीन गुणों में बंधी हुई है इसीलिए। लेकिन जैसे भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो नेचुरली निर्दोष होता चला जाता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जब वहां प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि क्या तुम मुझे गोद ले सकते हो? अगर तुम मुझे गोद ले लोगे ना, तो मेरे को जो है यहां पर प्रचार करना आसान रहेगा मेरे को। अब ये जो है एक मासूमियत की बात है। कोई एक बूढ़ा व्यक्ति अपने शिष्य से क्यों बोलेगा कि ना मेरे को ना गोद ले लो? ये इनोसेंस है, मासूमियत, निर्दोष होना। और हम देखते हैं कि इस तरह के भक्त जो होते हैं कि ना बहुत चतुर नहीं होंगे, कोई कपट नहीं होगा, हाँ, तो ऐसा व्यक्ति निर्दोष होता चला जाता है वास्तव में। और ऐसे व्यक्ति की जो शुद्धता है ना, वो उसके व्यवहार में, उसकी वाणी में, हाँ, उसके कार्यकलापों में पता लगती है। किसी और को बताना नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति निर्दोष होता है। उसे प्रकृति के तीन गुणों का जो उतार चढ़ाव है होते ही नहीं उसमें। हृदय में विकार आता ही नहीं। अगर कोई सेंस ऑब्जेक्ट सामने है या कोई इंद्रिय तृप्ति का कोई संभावना है, तो उसको जो है कुछ उतार चढ़ाव नहीं आते हृदय में। ओए ओए, अरे ये तो बड़ा अच्छा है, ओए दिस इज सो डिलीशियस, तो उसके अंदर ये सब भावना नहीं आती कि इसको मैं भोग करूं, इसको एंजॉय करूं, इसको एक्सप्लॉइट करूं, इसका शोषण करूं। निर्दोष पवित्र होता है ऐसा व्यक्ति। तो 5.20 तो ऐसा वास्तव में क्यों बताएं? क्योंकि वास्तव में ये व्यक्ति जान गया है कि मैं इस संसार में रह रहा हूं, लेकिन ऐसी मैं संसार का हूं नहीं। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में कमल की तरह रहता है। कमल जानते हैं कमल की क्या खासियत होती है? इट इज इन द मड बट इज नॉट ऑफ द मड बट अबव द मड। इस तरह से ऐसा जीव जो होता है वो भी संसार में रहता है, लेकिन संसार का होके नहीं रहता, संसार के ऊपर होके रहता है। समझ रहे इस बात को? तो वास्तव ऐसे ऐसा नहीं कि जो महात्मा जन होते हैं वो जब भौतिक संसार में आते हैं तो हम देखेंगे अरे भाई इनकी भी तो हड्डी मांस का शरीर है। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलती करेंगे हम, बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो जो दिव्य पुरुष होते हैं, बाहर से भले हमारे जैसे दिखें, लेकिन उनकी चेतना इतनी उन्नत होती है वास्तव में कि वो संसार में होते हुए भी संसार के नहीं होते, बस संसार के परे होते हैं। तो वास्तव में ये इस तरह की स्थिति है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जानता है ये जहां मैं रह रहा हूं ना, दिस इज फॉरन नेचर फॉर मी, ये जो है ये मेरी पराई पराई जगह है, ये मेरी अपनी जगह नहीं है। प्रभुपाद जी बोला करते माय हार्ट इज ऑलवेज इन वृंदावन, माय होम इज वृंदावन। वो न्यूयॉर्क में आगे ऐसे नहीं लगा कि ओके नाउ आई एम अमेरिकन ना। जब प्रभुपाद जी ऐसे सर्दियों के दिन थे वहां पर, तो कुछ और सोसाइटी के भी स्वामी जी आए हुए थे वहां पर, तो प्रभुपाद जी तो अपने संन्यास ड्रेस में रहते थे, धोती कुर्ता और हाथ में छड़ी होती थी बस, साथ में एक शॉल हो गई। तो कुछ दूसरी सोसाइटी के जो लोग थे कहते थे अरे स्वामी जी थोड़ा ब्रांडी ले लिया करो, देखो सर्दी के दिन है, गर्मी आती है शरीर में, बूढ़े हो मर जाओगे। तो प्रभुपाद जी ने जवाब क्या दिया? प्रभुपाद जी ने जवाब दिया लोग यहां पर आते हैं और अमरीकी संस्कृति को अपनाते हैं इसलिए क्योंकि वो अमरीका से कुछ लेने के लिए आए हैं, लेकिन मैं यहां कुछ लेने के लिए नहीं आया, मैं यहां कुछ देने के लिए आया हूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में जानता है कि वो कहीं पर भी है, उसका हृदय कहां पर है? कृष्ण के पास है हमेशा। नहीं तो न्यूयॉर्क जैसी जो लाइफ है, नहीं न्यूयॉर्क इज वेरी फ्लैशी लाइफ, अगर रात स्पेशली नाइट लाइफ है न्यूयॉर्क की, वेरी फ्लैशी, बहुत चमक दमक वाली, लेकिन है खोखली, नीरस, बड़ी बोरिंग है, लेकिन बहुत चमक दमक वाली है। लेकिन जिस व्यक्ति का हृदय जो है कृष्ण में स्थित है, तो न्यूयॉर्क जैसी जगह में भी वो भ्रमित नहीं होता। तो क्यों ऐसा व्यक्ति जो है दिव्य धरातल पर स्थित है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी या फिर श्रील प्रभुपाल। और इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, 21वां, यही संस्पर्श जा भोगा। तो ऐसे व्यक्ति जानता है कि वास्तव में ऐसे जो भोगों का शुरुआत है और अंत है तो इसमें लगता नहीं है। तो ऐसे कई उदाहरण है, बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण तो आपको इस कौन में मिल जाएंगे, खैर वर्तमान समय में, कि संसारी भोगों से कुछ लेने देना नहीं है। हाँ, बल्कि बाहर के लोग उनको थोड़ा अजीब लगता है। अगर किसी को बताओ कि अच्छा तो आप लोग इस कौन में फिर आपको खाना पीना कैसा होता है आप लोगों का, हम लोग प्याज लहसुन नहीं लेते, हम लोग चाय कॉफी नहीं पीते, और हम लोग मीट ईटिंग नहीं करते, कोई किसी तरह का नशा नहीं करते, अवैध संबंध नहीं बनाते विवाह के बाहर, और तो ये हमारे जो है, और जुआ नहीं खेलते हम लोग, तो तुम लोग इतना कुछ नहीं करते, तुम लोग जीते कैसे हो? बाप रे बाप। स्पेशली अगर कोई पंजाबी बैकग्राउंड से आ रहा हो, हाँ कहेंगे तो पंजाबी है, पंजाबी यदि नक कटा देती है ने, पंजाबी तो खाओ पियो होते हैं, हाँ तो पंजाबी कल्चर से अगर कोई यहाँ डिवोटी बनता है तो वो है और हैरान होते हैं, अरे कमाल हो गया, तो प्याज नहीं लहसुन नहीं मीट नहीं है, तो पंजाबी है क्या है? पर हम इसको और नहीं देखेंगे, और क्योंकि और इसके लिए हमें कोई बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ता, ये हमने आपको बहुत तनाव में डाले हैं ये नियम पालन करने में, ना ना ना, भक्त बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्यों? हायर टेस्ट। जैसे कि आप बासमती राइस खा रहे हो, पहले आप परमल राइस खाते थे, परमल राइस आता है सस्ता आता है टूटा हुआ चावल है ना, तो भाई आप, आपकी एक दिन लॉटरी लग गई और आपने बासमती खाना शुरू कर दिया। अब बासमती खुशबूदार चावल होता है, ठीक है, उसमें आपने थोड़ा केसर डाला, गाय का घी डाला उसके अंदर, हाँ और थोड़ा सा उसे फ्राई किया, तो आप बोला अब आपने चावल खाने शुरू कर दिए, ठीक है, तो आपसे कोई पूछे क्यों भाई अब आपको क्या उस परमल चावल का स्वाद से विरह नहीं लगता? क्यों लगेगा भाई, अब हम बासमती खाते हैं, हाँ अब पहले हम खाते थे 10 रुपए किलो वाला, किलो वाला अभी 150 रुपए किलो वाला में आता है क्योंकि लॉटरी लगी हमारी, हाँ तो हमें सेपरेशन होती नहीं। इसलिए उसी तरह से भक्तों को जो है क्यों सेपरेशन फील नहीं होती कि भाई कभी मीट ईटिंग की क्या, किसी को भाई लगे कि आज चाय की बड़ी हुड़क लग रही है जी, आज आज हो जाए 2 प्याले, हाँ कभी एहसास ही नहीं होता। क्यों नहीं एहसास होता? या प्याज लहसुन, या प्याज लहसुन की बिना कोई को सब्जी बनती है, कमाल है। लेकिन आप भक्तों के साथ आप देखोगे ना, यहाँ पर भगवान के लिए 1008 आइटम बनेंगे अगर जन्माष्टमी के दिन, सब के सब बिना प्याज लहसुन के होते हैं, और सब ऐसे होते हैं कि आपका मन करेगा इसमें मैं डूब जाऊं, इतने स्वादिष्ट होते हैं। तो भक्त जो है हायर टेस्ट, एक ऊंचे स्वाद का आस्वादन कर रहे हैं, इसलिए वो लोअर टेस्ट की कभी याद नहीं आती। तो इसे भक्तों को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता अपने आप को शुद्ध करने के लिए, इट इज वेरी नेचुरल, बड़ा प्राकृतिक है उनके लिए, क्योंकि वो ऊंचे स्वाद का आस्वादन कर रहे हैं। तो नीचे की चीज अपने आप गई, अब बासमती राइस आ गया ना भक्ति का, तो संसार के स्वादों का जो परमल राइस है वो गया, तो दैट्स वेरी नेचुरल वास्तव में। ओके, तो 5 इसे, तो ऐसा क्यों हो पाता है वास्तव में? तो बुद्धिमान मनुष्य जो है, अच्छा ये हो गया, ओके दिस इज जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, अंतःकरण में, ठीक है, अभी अंतःकरण क्या है इसमें हम चर्चा करेंगे, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमन करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है, यह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोद्गत्वा ब्रह्म को प्राप्त करता है। ब्रह्म के मैं क्लियर करना चाहूंगा, ब्रह्म जो है यहां पर क्या है, वो चीज जो भौतिक नहीं है उसको हम ब्रह्म कह सकते हैं, ठीक है, ये वाला ब्रह्म नहीं है, अरे मैं बड़ा भ्रमित हूं ये क्या चीज है, ये वाला ब्रह्म नहीं है, ठीक है, वो भ से शुरू होता है, भालू वाला भ, ठीक है, ये ब्रह्म ब वाला है, ठीक है, ब्रह्म का मतलब वो चीज जो कि सांसारिक कलमश से मुक्त है। इसलिए भगवान को भी कभी कभी ब्रह्म बोला जाता है, भगवान श्री कृष्ण को, क्यों? क्योंकि उनमें प्रकृति के 3 गुण नहीं है, हाँ, इसलिए भगवान को कभी कभी निर्गुण भी बोला जाता है। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि उनमें कोई गुण नहीं है, वो होता है बेगुण, जिसमें कोई गुण नहीं है, भगवान को निर्गुण बोला जाता है कभी कभी, तो इसका मतलब ये है कि भगवान में सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है, ठीक है ना। उनमें जो गुण है क्या है, आध्यात्मिक है। जैसे कि बहुत सुंदर है, सुंदर होना एक गुण है, लेकिन भगवान की सुंदरता कैसी है, आध्यात्मिक है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब के पहले श्लोक जो क्या है उसमें क्या लिखा है, अकाल मूरत एक ओंकार सतनाम, जैसे उसमें आता है ना, तो उसमें बीच में आता है अकाल मूरत। तो भगवान की जो मूरत यानी भगवान का जो रूप है वो अकाल है, यानी कि काल के द्वारा जिसका घर्षण नहीं होता। हम सबके रूप का क्या होता है, काल से घर्षण होता है ना। अभी भले कोई हैंडसम हो, थोड़े समय बाद एक झुर्री आएगी, हाँ, या कोई बहुत सुंदर हो, उसके बाद धीरे धीरे गिरेंगे, है ना। जैसे एक बार एक लड़का था, वो एक सुंदर स्त्री का पीछे पीछा करता था, अरे बहुत सुंदर लड़की है, तो पीछे चलता गया चलता गया चलता गया, और अपने उसने दरवाजा खुला दरवाजा बंद कर दिया। तो वो की होल से देख रहा था उसको, की होल से उसने देखा, उसने वेग उतारी अपनी, उसने नकली दांत निकाले, ठीक है, उसकी इतनी ऊंची हील थी, तो ये इतनी ऊंची लग रही थी, निकली वो 4.5 फुट की। हाँ, उसने अपनी बेल्ट खोली तो उसकी तोंद आई ठुक। तो हमारी मूरत कैसी है, काल मूरत। भगवान की मूरत, भगवान का रूप कैसा है, अकाल मूरत। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, तो सच्चिदानंद रूप है भगवान का। तो भगवान अगर भगवद गीता का संदेश दे रहे हैं तो भले वो 125 साल के हों, लेकिन वो देखिए कैसे रहे, 15 साल के लड़के की तरह। तो भगवान का रूप क्या है, वो जो है वो समय के द्वारा उसका घर्षण नहीं होता, वो दिव्य है। ऐसे उसको निर्गुण बोला जाता है कि वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के परे है, इसलिए वो निर्गुण है, नहीं है, लेकिन वह आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण है, अनंत गुण है भगवान के। तो यहां बता रहे हैं अंतर अंतःकरण में आनंद का अनुभव करता है। अभी अंतःकरण में आनंद का अनुभव कैसे होता है वास्तव में, अच्छा किसको पता है आत्मा का साइज कितना है। आत्मा जो है, आत्मा कहां होती है, हृदय में होती है, ठीक है। परमात्मा कहां होते हैं, हृदय में, किस जगह पर, वेरी गुड। अगर हम हृदय की बात करें तो हम शरीर के बाहर की बात तो नहीं कर रहे, शरीर के अंदर की बात कर रहे हैं। ओके, तो शरीर के अंदर हृदय में ही आत्मा होती है, और आत्मा के अंदर परमात्मा होते हैं। लेकिन परमात्मा भली आत्मा के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आत्मा की इच्छाओं के साथ इंटरफेयर नहीं करते वो। यानी कि अंदर बैठ गया तो जो मैं कहूंगा वही तेरे को करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं। आत्मा के अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी आत्मा की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। तो आत्मा जो है असल में क्या कर रही है, अभी बाहर सुख ढूंढ रही है, वो अंदर परमात्मा क्यों नहीं देख रही, वो बाहर क्यों देख रही है। अब बाहर देख लूं जरा मैं, है क्या क्या खुला है बाहर, क्या क्या है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। हाँ, तो बाहर बाहर देख रहा है वो आनंद। अभी आत्मा जो है बाहर क्यों देख रही, इंद्रियों से जो है वो, आंखों से, हाँ, नासिका से, जीवा से, अभी बाहर आनंद ढूंढ रही है वो आत्मा। अभी हमारी चेतना अभी क्या है, इसलिए बाहर क्यों आ रहा है। तो यही आत्मा जब अंदर की ओर जाती है, यानी कि आत्मा जब अंदर देखेगी तो किसको देखेगी, परमात्मा को, तो देखती ओए ये कौन है। तो इससे जो परमात्मावादी होता है वो ये सवाल पूछता है, आप कौन है। जो भक्त होता है पहला सवाल क्या पूछता है, मैं कौन हूं। अच्छा, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। लेकिन जो परमात्मावादी होता है वो क्या पूछता है पहले, आप कौन हो। तो परमात्मा बताते हैं मैं परमात्मा। तो जब परमात्मा, तो परमात्मा की कृपा से जब उसको ये दिव्य ज्ञान मिलता है तो जान पाता है, अच्छा मैं आत्मा हूं, आप परमात्मा हो, और हमारे बीच में ये दिव्य संबंध है, और मुझे जो है आत्मा को परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। तो वास्तव में ऐसा व्यक्ति आनंद में रहता है। तो बाहर क्या चहल पहल हो रही है उसे फर्क नहीं पड़ता उसे। जैसे कि हिरण होता है, हिरण के कस्तूरी से जो है बाहर खुशबू निकल रही है, वो बाहर ढूंढ रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हाँ, वो दौड़ के यहां जाता है, नहीं वहां से आ रही लगता है, फिर वहां दौड़ के जाता है, फिर इस तरह से जो यहां जाएगा वहां जाएगा यहां जाएगा, वो ढूंढता है कस्तूरी की खुशबू कहां से आ रही है, और थक हार के बैठ जाता है। यही हम लोग कर रहे हैं वास्तव में। आनंद जो है वो आत्मा में ही है, लेकिन आत्मा को हम भुला बैठे, नहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, वही आत्मा का आनंद बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आनंद कहां है, आत्मा में ही है। ऐसा व्यक्ति होता है अंतर्मुखी हो जाता है। अभी हमारी हालत क्या है, हिरन जैसी है, बाहर ढूंढ रहे हैं हम, ये खा लूं तो मजे आ जाए, हाँ ये चख लूं, ये कर लूं, तो हम जो है बाहर ढूंढ रहे हैं उस आनंद को जो कि वास्तव में अंदर है। तो कस्तूरी क्या है, हिरन की नाभि में ही होती है ना। तो इसलिए आत्मा जब ये जान जाती कि मैं भगवान की अंश हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान का दास हूं या दासी हूं, और मैं उनकी सेवा के लिए ही बनाऊ, मेरा अस्तित्व ही उस लिए है, तो ये उसके आनंद की शुरुआत है वास्तव में। इस बात का साक्षात्कार करना अगर शुरू कर दे तो हमें हिरण नहीं बनना, हमें मनुष्य बनना है, हमें जो है अपनी चेतना को अंदर लेके जाना है, अंदर देखना है कि अंदर अंदर कौन है। अंदर हम देखेंगे हमारे जो है जो नित्य हमारे मित्र हैं, यानी परम भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में, उनका हम संग करेंगे, तब जो है वास्तव हम सुखी होंगे। नहीं तो बाहर जो है हम चंचल ही रहेंगे, मन अगर बाहर की ओर रहेगा तो चंचल ही रहेगा, आप बाहर मन को कभी स्थिर नहीं कर सकते। अगर कलयुग में कोई आपको कहे कि हम आपको एक मेडिटेशन टेक्निक सिखा रहे हैं आपके मन को कंट्रोल करने के लिए, वो आपको धोखा दे रहा है, पक्की बात। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही बेसिक फ्लॉ है जो कि यहां भगवद गीता में बताया जा रहा है कि वास्तव में आत्मा को अपने अंदर यानी परमात्मा को देखना पड़ेगा, तो आत्मा देखेगी अरे परमात्मा मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। तो आत्मा और परमात्मा जो, लेकिन एक नहीं होते हैं। हाँ कभी कभी लोग कहते हैं कि मुक्ति का मतलब क्या है, आत्मा जब परमात्मा में मिल गई, घुल गई, एक हो गए। लेकिन आत्मा के बारे में हमने दूसरे अध्याय पढ़ा कि आत्मा घुलनशील नहीं है, है शिकंजी बनाते हैं ना उसमें चीनी घुल जाती है, तो चीनी क्या है, घुलनशील है, लेकिन आत्मा घुलनशील नहीं है, तो वो कभी परमात्मा में घुलती नहीं है, वो हमेशा परमात्मा से अलग थी, अलग है और अलग ही रहेगी। फर्क सिर्फ यह है कि अभी वो भगवान को भूली बैठी है, जब भगवान को याद कर लेगी तो भगवान की प्रेम में ही भक्ति में लग जाएगी। ठीक है, तो ये है इसका अर्थ। तो ये जो है इसमें यहाँ चर्चा की गई किस तरह से आत्मा परमात्मा के बीच में संबंध होता है, और जो व्यक्ति परमात्मा के साक्षात्कार जिसने किया है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कोई सवाल हो? बहुत अच्छा, हम कैसे जाने? हाँ तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम तीन लोगों की शरण लें, हरि गुरु एंड वैष्णव, ये हमें बताएंगे वास्तव में भगवान की सेवा कैसे की जाती है। ऐसे कई लोग ना गुरु मतलब कि भाई गुरु की शरण में जाएंगे तो ना आज्ञा पालन करनी पड़ेगी, तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि ना एक ऐसे गुरु चुनते हैं जिनसे वो आजादी से रह सकें। जैसे कि एक मैं व्यक्ति से मिला था IIT में, कहते हैं हमारे गुरु तो हनुमान जी हैं, उनको पता हनुमान जी आगे कुछ बोलने वाले हैं नहीं, हैं जो करना करो, कहते हमारे गुरु तो हनुमान जी हैं, तो इसलिए हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमको हनुमान जी बताते हैं। हाँ ठीक है भाई, लेकिन गलत काम करो फिर गदा से पिटाई जरूर होगी बाद में, हनुमान जी पिटाई बहुत करते हैं फिर, बेटे मेरे को गुरु बनाकर तुमने बहुत गलत सलत काम किया तुमने। तो वास्तव में हम गुरु जो है ऐसे बनाने पड़ते हैं जिनके साथ हम जो है एक्सचेंज कर सकें, उनसे हम श्रवण कर सकें। तो ऐसे गुरु होने चाहिए। तो हरि गुरु सॉरी साधु गुरु और शास्त्र, इनकी हमें शरण लेनी पड़ती है ये जानने के लिए कि हरि की सेवा कैसे की जाए। तो शास्त्र हमें बताएंगे, गुरुजन हमें बताएंगे, वैष्णव बताएंगे, भक्त बताएंगे हमें, तो वो हमें कंफर्म करते हैं। जैसे कि अगर हमें दवाई लेनी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। अब मुझे खांसी है अगर मैं कहूँ जी क्या मैं अब अपने मैं कैसे जान लूँ कि मैं सही दवा ले रहा हूँ, सिंपल है, डॉक्टर के पास जाओ, लो भाई ठीक है भाई ये दवाई है ले लो। अब आप सही हॉस्पिटल में आ गए, यहाँ डॉक्टर भी बहुत बढ़िया हैं, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एम्स है। ठीक है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है हम यहाँ खोला हुआ हमने, तो अब आप सही जगह आ गए हैं, आपको खोज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दिस इज अ परफेक्ट प्लेस। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं इस्कॉन से हूं तो मेरे को अब इस्कॉन की तो बढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन अंदर से सोच अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। अगर मेरा ये अनुभव नहीं होता मैंने कभी ये कपड़े नहीं पहने होते, मैं बाहर रहता, अरे बेकार सोसाइटी है, खाओ पियो खाएंगे पियेंगे और बाहर ही रहेंगे। पर अगर मैंने अपना जीवन समर्पित किया तो मैं जानता हूँ कि वास्तव में ये सही हॉस्पिटल है, तो आप सही जगह आ चुके हैं। ठीक है, ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, यहाँ बहुत से डॉक्टर्स हैं, वेरी एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, तो आप चिंता मत करिए। ठीक है, और किसी को कोई सवाल? यस बहुत बड़े सवाल। देखो भगवान ने क्यों बनाया प्याज लहसुन? खाने के लिए ना, तो क्यों नहीं खाते? अरे खाओ। अच्छा सवाल है, जैसे कि आप दिल्ली गवर्नमेंट ने अच्छे अपार्टमेंट्स भी बनाए हैं, तिहाड़ जेल भी बनाया है, तिहाड़ जेल क्यों बनाया? रहने के लिए, रहो एंजॉय। क्यों क्यों बनाया बताओ? इतना इतनी बड़ी जगह दे रखी है दिल्ली में, हद हो गई है। तो भगवान ने बनाया है सब कुछ, लेकिन ये नहीं कि जो भगवान ने बनाया हम तो हम जी सबके मजे उड़ाएंगे, है ना? ऐसा नहीं है। भगवान ने इसलिए दिया है ताकि हम चॉइस कर सकें। अगर चॉइस ही नहीं रहेगी तो हम सही गलत में से सही को कैसे चूज करेंगे? अब मान लीजिए अगर स्वयंवर हो किसी का और एक ही व्यक्ति खड़ा हो, ले स्वयंवर है, चुन ले अपना दूल्हा, और खड़ा है एक, मैं वो टीरा है, सामने दो दांत नहीं है उसके, तो कहोगे उसे स्वयंवर है वो? नहीं ना, स्वयंवर मतलब भाई कोई चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि टेढ़े मेढ़े भी हों, कोई सीधे भी हों, ये टेढ़ा वाला बढ़िया है तो वही वो टेढ़े वाले से कर लेगी ब्याह, है ना? पॉइंट इज दैट चॉइस शुड बी देयर, है ना? सही गलत में अगर के चुनाव के लिए अगर आपके पास चुनाव नहीं है तो वास्तव में हमारी स्वेच्छा कैसे आएगी, है ना? और प्रेम की जहां बात आती है, भगवान के साथ अगर हमें प्रेम करना है तो भगवान को चॉइस देनी पड़ेगी ना, कि मेरे से प्यार करना है या प्यार से प्यार करना है, तो भगवान को ऑप्शन देनी पड़ेगी ना। भगवान कहते ले मैं ही हूं बस, मेरी भक्ति करनी पड़ेगी तेरे को, कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसमें प्रेम होगा? भगवान ठीक है कर लेता हूं भगवान, है ना? चॉइस देनी पड़ेगी, है ना? तो इसलिए प्याज लहसुन भगवान ने बनाया है, ठीक है? ऑफ कोर्स अल्टीमेटली भगवान की सृष्टि का ही भाग है सब कुछ, लेकिन भगवान की सारी सृष्टि में सब कुछ खाने पीने के लिए थोड़ी है। हाँ वर्जित कारण, ये बड़ा है मौन। ऐसे क्यों भेदभाव क्यों प्रभु जी? है मूली सब्जी भी तो उगती है, वो खा लो, प्याज लहसुन से क्या दुश्मनी है आपकी इस्कॉन वालों की, बताओ जरा हमें। तो इसका जो है हमें बात समझना है कि हम जो चीज खाते हैं ना वो हमारे दो शरीरों को अफेक्ट करती है। एक है हमारा स्थूल शरीर जो कि ये हड्डी मांस इसका बना हुआ है, एक होता है हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि अहंकार, ठीक है? ये दोनों ही शरीरों को जो भी आप खाएंगे इसका प्रभाव शरीर पे पड़ेगा। शरीर का मतलब सिर्फ ये शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर भी होता है, क्योंकि प्याज लहसुन के अंदर रजोगुण तमोगुण की प्रधानता होती है, इसीलिए इनको खाने के लिए मना किया जाता है। तो ये तो हो गया बायोलॉजिकल रीजन, ठीक है सर? ये हो गया दिस वाज बायोलॉजिकल रीजन, यस। अब इसका आध्यात्मिक रीजन सर, ये तो था, ये था आध्यात्मिक रीजन। बायोलॉजिकल रीजन क्या है इसका? बायोलॉजिकल रीजन इसका ये है कि आई डोंट नो आप में से कितने लोग समझ पाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं तो समझ सकते हैं। एक्चुअली इनके अंदर ना फ्री रेडिकल्स बहुत होते हैं, एक पार्टिकल होता है फ्री रेडिकल करके समझ लीजिए, ठीक है? ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं? शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स को खत्म करते हैं। तो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स अगर कम हो जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी ना, और ऑक्सीजन की क्वालिटी क्या है, केमिकल जो उसकी प्रॉपर्टी है वो है जलाना, जलाने में मदद करती है ऑक्सीजन, है ना? जैसे कि मोमबत्ती होती है तो फूक मारो और जानती क्यों बुझ जाती है वो? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे दूसरा हमने ऑक्सीजन हटा दिया उसके पास से तो बुझ जाती है। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, जलाती है। तो जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं वास्तव में उनके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कम होते हैं यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है उनके शरीर में बीमारियां ज्यादा लगेंगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से जलन ज्यादा हो रही है शरीर के अंदर जो सेल्स की है, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति बूढ़ा भी जल्दी होगा और ऐसे व्यक्ति को शरीर में बीमारियां भी ज्यादा लगेंगी। और इसका जो है शास्त्रिक जो कि आध्यात्मिक रीजन वही है कि इसके अंदर रजोगुण तमोगुण बहुत होता है, और जो भक्ति के पथ पर है उसके लिए रजोगुण और तमोगुण बहुत खतरनाक है, बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। और सोचो जो रजोगुण में है, मन बेचैन है उसका, वो क्या ध्यान लगाएगा? वो यहां बैठ ही नहीं पाएगा, वो यहां बैठ जाएगा पता नहीं कहां कहां घूम के आ जाएगा वो तो, मन से रजोगुण। तमोगुण है वो तो फिर ठाए, आंखें बंद समाधि तो हो गई। तो रजोगुण तमोगुण तो दोनों ही फेवरेबल नहीं है, तो इसीलिए जो है ऐसी कोई चीज जो कि रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाती है उसे हम दूर रहते हैं। तो प्याज लहसुन से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है, उन्होंने जिस तरह का स्वभाव लिया है उसलिए हमें उन्हें प्रणाम करना पड़ता है दूर से, और हम लोग जो है इस तरह से चलते हैं। और इसका एक और कारण जो ये है कि प्याज और लहसुन का जो जो सोर्स है, मैं स्टोरी में नहीं जाऊंगा, जो शास्त्र में आती है वो गौ मास है, इसलिए प्याज लाल रंग का होता है क्योंकि गौ मास का जो है उसी का ये एक विकृत रूप है, उसी का जो है ये एक विकृत रूप है जो प्याज के रूप में आता है। और लहसुन जो है वो गाय की हड्डी से बना है इसलिए वो सफेद रंग का होता है, शास्त्रों में इसके बारे में कथा है पर मैं उसमें डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं। तो इसका जो ओरिजिन है वो गौ मास है, प्याज लहसुन का, गौ तो को तो हम माँ मानते हैं, है ना। तो इस तरह से ये कई कारण है जिस वजह से हम प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते, क्योंकि ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, ठीक है। और किसी को कोई सवाल? हाँ 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 बात बिल्कुल सही है। कलयुग में तो इतना बुरा हाल है कि हम दवाई भी ठीक से नहीं ले पाते, हाँ, बीमारी की फुल फ्लैश फैसिलिटी है कि आप किस तरह से बीमार हो, हाँ, लेकिन दवाई लेने के लिए जो है यहाँ संघर्ष करना पड़ता है। तो हरि नाम जो है वो दवा है, तो दवा लेने के लिए भी कलयुग में संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए भगवान ने कहा तुम बस नाम ले लो। सोचिए ध्यान योग बोला होता कलयुग के लिए, हम में से हम सब यहीं पे रहने वाले थे, भगवान ने कितना आसान बना दिया है ना, कि एसी रूम हो, पंखा भी चल रहा हो, लाइटें हो, जहां हो वहां बैठ के हरि नाम ले लो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आसान इसीलिए बनाया क्योंकि कलयुग जो है इट इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, किस तरह से जो है हम अपना फोकस खो दें, अपनी एकाग्रता खो दें, इसकी इतनी बढ़िया सुविधा है कलयुग में। तो ये संघर्ष है आपका, मैं बिल्कुल मानता हूं, तो बेहतर ये रहेगा जब संसार सो रहा हो, ठीक है, जब ये चहल पहल कम हो, यानी कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स, उस समय अगर आप भगवान का नाम लेंगे बड़ा अच्छा रहेगा। उस वक्त सतोगुण का समय होता है, शांति, ठीक है, उस वक्त अगर हरि नाम लेंगे बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर दिन के समय रहेंगे जब चहल पहल होती है तो ऑफकोर्स मुश्किल होगी, तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ वर्जित तो नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं रहेगा क्योंकि मंदिर में लाइफ जो है ना बहुत, ये मिलिट्री लाइफ है एक्चुअली, तो यहाँ कोई 60 साल का व्यक्ति आए जो कि अभी इतना जो है उसको अभ्यस्त नहीं है इस लाइफ से, तो यहाँ पर जो उसको बल्कि मुश्किल होगी। तो हाँ हाँ आश्रम में ऑफकोर्स रहना चाहे तो उसकी इच्छा है। हाँ 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 ये विचार अच्छा है, लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि यहाँ पर एज से मैं डिफाइन नहीं होता है कि मेरी इतनी एज हो गई है इसलिए मुझे छोड़ना है, यहाँ डिफाइन करता है जो चीज, वो जो पैरामीटर है वो है संसार से कितनी विरक्ति हुई है, ठीक है। कभी कभी हम विरक्ति नहीं आई होती, वो सिर्फ ऊब गए होते हैं हम लोग, अरे यार बेकार है, तो हम सिर्फ ऊबे होते हैं लेकिन वैराग्य नहीं आया होता अभी, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में भले ही हमारी उम्र ज्यादा हो गई हो, उम्र जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, भगवान के प्रति लगाव और संसार से विरक्ति, ये दो पैरामीटर हैं। तो इसलिए प्री मैच्योरली घर छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए बेहतर ये रहना होगा कि जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति को आप कृष्ण भावना भावित बनाए, समझ रहे इस बात को, तो जो परिस्थितियां उसको कृष्ण भावना बनाने की का प्रयास करिए। अब जो अनचेंजेबल है, जो कि चेंज नहीं हो सकता, ऑफकोर्स उससे दूर हटें, लेकिन जो परिस्थितियां उसको कृष्ण भावना भाव बनाने का प्रयास करें। इसलिए प्री मेच्योर रिनाउंसिएशन जो है भगवान ने गीता में कंडम किया, थर्ड चैप्टर की शुरुआत में। चैप्टर 3 वर्स 6 में जहां भगवान मिथ्याचार की बात कर रहे हैं, तो प्रीमेच्योरली इसे छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे करके। जैसे हमने एक बार एग्जाम्पल दिया था नारियल का, नारियल को अगर आप ढप देना फोड़ दो अगर ना, फिर आप उसमें घड़ी निकालते रहो, ज्यादा संघर्ष होता है ना। अगर टक 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 मार लो अगर, तो घड़ी ना घड़ी अंदर से अलग हो जाती है खोल से, धीरे धीरे करके, है ना। फिर आप उसको फोड़ोगे तो घड़ी ना आसानी से निकल आती है, ठक 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 2-3 बारी में आपकी घड़ी निकल आएगी। लेकिन एक ही बारी में फोड़ दोगे नारियल को तो घड़ी निकालना आपको मुश्किल होगी, ठीक है। तो इससे जो है पहले ठक 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 थोड़ा प्रिपेयर करना चाहिए अपने आपको। तो प्रीमेच्योर रिनंसिएशन जो है वो, यानी कि सही समय से पहले सब कुछ छोड़ना, वो हानिकारक भी हो सकता है। इसे धीरे धीरे करके जो है दूर होना चाहिए। और इसके दूर भी हम कैसे हो पाएंगे, भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ा के। लस्ट कैन बी कॉन्कर्ड बाई लव। लस्ट को ऐसे कोई नहीं जीत सकता कि मैं लस्ट को जीत लूंगा, कोई नहीं जीत सकता लस्ट को। लस्ट कैन बी कॉन्कर्ड बाई लव, है ना। तो कामुकता को जीतना है हमें प्रेम से। प्रेम वो शक्ति है, भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, वो हमें शक्ति देता है कि हम वासनाओं से दूर हो सके। ये तो कोई वासनाओं से लड़ता रह जाए कभी नहीं छूट सकता। जैसे वो होता है ना जो शहद होता है, अगर अगर आप पेड़ से निकाल लो, आप उसे है ना अपनी उंगली अलग करने की कोशिश करो कि मैं ये उंगली अलग कर लूँ, तो यहाँ चिपक जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे करो, ले यहाँ चिपक गया हो, और यहाँ ले यहाँ चिपक गया हो। तो लस्ट बिल्कुल ऐसी ही है, वो चिपकी रहेगी। तो जो है उसके ऊपर स्प्रे मारना पड़ता है जिससे कि वो अलग हो जाए। वो स्प्रे क्या है, प्रेम का, भगवान के प्रति प्रेम का। तो हमें भगवान के प्रति प्रेम की ओर ज्यादा फोकस करना चाहिए, अपने आप ये जो है हमें विरक्ति आएगी। तो हमें जो उस तरफ सोचना चाहिए, ठीक है। और किसी को कोई सवाल? हाँ, मैं विलीन कब हो जाती है, विलीन, हाँ, आत्मा क्या है, हाँ, घुलनशील नहीं है, यस। तो आत्मा कभी परमात्मा में घुलेगी नहीं, आत्मा कभी भी जो है परमात्मा में घुलेगी नहीं, क्योंकि घुल गई थी आप एक आध्यात्मिक शिकंजी बन गई हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। आत्मा हमेशा परमात्मा से अलग ही रहेगी, वो जुड़ती है प्रेममयी सेवा के कारण, लेकिन घुल के कभी एक नहीं होती। ये आत्मा जब परमात्मा में घुल गई थी, घुल गई, अपना एक हो गया, सोल सुपर सोल सॉल्यूशन, ऐसा कभी नहीं आएगा समय। तो आत्मा कभी भी परमात्मा में घुलती नहीं है, हमेशा अलग रहेगी। अगर याद आ जाएगी उसे परमात्मा की, तो परमात्मा से प्रेममयी संबंध बनाएगी, यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ। लेकिन कई भगवान में एक होके मिलेगी नहीं, क्योंकि वो घुलनशील नहीं है, ठीक है। यस माता जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर मन जिद्दी है तो उससे जिद्दी आपको बनना है। अगर आपको दुश्मन बहुत जिद्दी है तो क्या करना चाहिए आपको, हाथ जुड़ने चाहिए, भाई तो आप बहुत जिद्दी हो जी, हम हार गए, आपकी जय हो, मैं हथियार डालता हूं, नहीं करेंगे ना। आपको एक क्षत्रिय की तरह लड़ना होता है। तो मन अगर जिद्दी है तो मन से ज्यादा जिद्दी आपको बनना है, कि मन अगर तू भागता है मैं तेरे को लेके आऊंगी, तो फिर जाएगा मैं तेरे को फिर से लेके आऊंगी, तो फिर जाएगा मैं तेरे को फिर से लेके आऊंगी। तो ये जिद लानी है हमें, ठीक है। बिल्कुल लगेगा, मन कहेगा कमाल है, अजीब आदमी है, कितना भागता हूं फिर ले आता है यहाँ पे। तो धीरे धीरे उसको पसंद आना शुरू हो जाएगा, मेरे को भी हरिनाम अच्छा लगता है, माता जी को अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है आप। तो मन फिर आपके साथ ही रहेगा, चलो भाई मिलके चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस प्रॉब्लम सॉल्व। पर आपको जिद्दी बनना होगा शुरू में, हथियार नहीं डालने हमें, वी हैव टू फाइट। जैसे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन गिव अप लेथार्जी, फाइट। अर्जुन कह रहे हैं भाई मैं नहीं लड़ना चाहता, कौन लड़ेगा ये। भगवान कह रहे नहीं, तुम्हें लड़ना होगा, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें लड़ना होगा। तो ये हमारे लिए संदेश है वास्तव में, कि हमें लड़ना है, हमें युद्ध लड़ना है, ना से लड़ना है, हमें इसे जीतना है, क्योंकि हम कृष्ण के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो मन को लगाना है हमें कृष्ण की सेवा में, ये मन जिद्दी है, इससे ज्यादा जिद्दी बनना है हमें। ये मन अगर सन की ज्यादा सन की बनना है हमें, लेकिन इसको कृष्ण की सेवा में लगाना है हमें, ठीक है। और यस माता जी, या और क्वेश्चन, 100 से चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो हज को चली है ना, भले उसने 100 से चूहे खाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो हज को चल दी है। तो इसलिए जो है अगर हमसे गलत काम हुए अनजाने में है ना, कमजोरी में, बुरी आदतों के द्वारा हम बंधे हुए थे, छूटना चाहा हम फिर से गिर गए, फिर से छूटना चाहा फिर से गिर गए, लेकिन वो संघर्ष में थे और हमको कुछ समय अकल भी नहीं थी, लेकिन अब भक्तों के संग में आए तो हमें कुछ सोचने का मौका मिला है ना, तो हमने प्रयास करना शुरू किया। तो भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान कहते हैं अब इसको पता है, अब ये जो है आने का प्रयास कर रहा है। हाँ, इसलिए भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम् त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच डोंट फियर, डरो मत, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। माम एकम शरणम रजा, एक मेरी शरण में आ जाओ बस। तो बस भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान तो पाप तो मारेंगे तो उड़ गए सारे, सो डोंट वरी, जस्ट सरेंडर टू कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।